ओम शांति। संतुष्टता और प्रसन्नता, यह दो मूल्य हमारे ब्राह्मण जीवन के श्रृंगार है। तो इस श्रृंगार को कैसे हम कायम रखें, आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी से हम जानेंगे। दीदी जी 44 इयर्स से ज्ञान में हैं, 31 वर्षों से आपने अपना जीवन बाबा की सेवाओं में समर्पित किया हुआ है, 30 वर्षों से आप मधुबन में अपनी सेवाएं दे रही हैं, शुरुआत में 10 वर्ष आपने ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दी और उसके बाद आदरणीय दादी डॉक्टर प्रकाशमणि जी के साथ आपको रहने का मौका मिला। हमारी महिला प्रभाग के आप मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन बहुत ही एक्टिव रूप से आप इस विंग की सेवाओं को संभालते हैं। उसके साथ साथ मधुबन में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, राजयोग शिविर हो, कॉन्फ्रेंसेस हो या बाबा मिलन के कार्यक्रम हो, सब में आप अपने प्रवचनों द्वारा आत्माओं को लाभान्वित करते हैं। देश विदेश में भी आपने अपनी बहुमूल्य सेवाएं दी हैं। तो आज हम जानेंगे दीदी जी से ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता एवं प्रसन्नता के बारे में। आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी ब्राह्मण जीवन में सर्वगुण संपन्न बन रहे हैं और संतुष्टता का गुण सभी गुणों का राजा कहा जाता है। संतुष्टता ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी है ऐसा कहेंगे, और प्रसन्नता पर्सनैलिटी है। और वैसे भी जो आध्यात्मिक जीवन में होते हैं उनके लिए इस गुण का विशेष महत्व है। भक्ति में भी हम देखते हैं कि जो भक्त हुए हैं उन्होंने इस गुण को विशेष अपनाया, चाहे उनकी कैसी भी स्थिति रही। कई जो परम भक्त हुए भगवान के, वो बहुत गरीब भी हुए, उन लोगों के पास कई बार खाने को भी नहीं होता था, लेकिन वो ये समझते रहे कि ये भगवान की इच्छा है और जो उसकी इच्छा है उसमें हम राजी हैं। बहुतों ने तो भगवान के लिए अपने भौतिक सुखों का भी त्याग किया, यानी वो संपत्तिवान थे, राजाई में थे, जैसे महात्मा बुद्ध राजाई में थे, लेकिन भगवान को पाने के लिए महलों का त्याग किया। महावीर स्वामी थे, राजाई में थे, राजाई कुल में जन्म हुआ, लेकिन वही कि भगवान को पाने के लिए उन्होंने भी राजाई का त्याग किया और कठोर तप किया। अनेक दिनों तक भूखे रहना, तो कहने का भाव ये है कि भगवान के लिए किसी भी हाल में हम संतुष्ट हैं। लेकिन जब हम ब्राह्मण जीवन में संतुष्टता की बात करते हैं तो यहाँ तो बाबा हमसे इस तरह का कोई त्याग नहीं करवाते हैं, लेकिन बाबा ने तो कहा है कि प्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, यानी हम बाबा के बच्चे सर्व प्राप्ति संपन्न हैं। तो हमारी संतुष्टता का आधार सर्व प्राप्ति है। सर्व प्राप्ति संपन्न है यानी जो बाबा के अखुट खजाने हैं वो खजाने बाबा ने बच्चों को दे दिए। जिस घड़ी जन्म हुआ, जिस घड़ी हम ब्राह्मण बने, उस घड़ी ही वो खजाने हमारे हो गए, तो वो सभी को मिले हैं। एक के द्वारा एक जैसे, एक ही समय ऐसा कहेंगे, लेकिन फिर भी नंबरवार है। नंबर वार इसलिए हैं क्योंकि उन खजानों को हम कितना अपना बनाते हैं, उन खजानों को हम कितना यूज करते हैं, उन खजानों को हम कितना बढ़ाते हैं। तो बाबा तो कहते हैं कि आपकी प्राप्तियां इतनी अखुट हैं कि जो बहुत काल के ब्रह्मा कुमार कुमारी बन गए उनकी 21 जन्मों की वंशावली, वो स्वयं तो हैं ही लेकिन उनकी 21 जन्मों की वंशावली और उनके भक्त और भक्तों की भी वंशावली उन प्राप्तियों के आधार से चलेगी। तो फिर इतनी अखुट प्राप्ति होते हुए भी असंतुष्ट क्यों हो जाते हैं? कभी कभी असंतुष्ट हो जाते हैं या सदा संतुष्ट रहते हैं? क्या कहेंगे, सदा संतुष्ट हैं या कभी कभी असंतुष्ट भी हो जाते हैं? जो समझते हैं हम सदा संतुष्ट रहते हैं और सदा खुश रहते हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, कुछ कुछ हाथ उठा रहे हैं, सोच सोच के उठा रहे हैं। हर परिस्थिति में हाँ, कुछ एक ने तो हाथ उठाया, 8-10 ने हाथ उठाया। तो हमें बाबा ने ये जो विशेष हमें इस संगम युग की प्रॉपर्टी कहे जो दी है उसे हमेशा अनुभव में लाना है, ये बाबा हमें कहते हैं। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया तो फिर और क्या चाहिए। हम कहते हैं पाना था सो पा लिया। ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले क्या अनुभव किया? जब बाबा के तन में शिव बाबा की प्रविष्टता हुई, बाबा को साक्षात्कार हुए, तब बाबा ने सबसे पहले ना अपने घर वालों को चिट्ठी लिखी कि अलफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ को हुआ रेल का राही। तो जो हीरे थे वो बाबा को पत्थर लगने लगे। यानी हमें पता है कि बाबा की जिंदगी में कोई कमी नहीं थी, बहुत ठाट का जीवन था, लेकिन भगवान के मिलते ही ये अनुभव हुआ। जो खोज रहे थे, इतना सब होते हुए भी ढूंढ रहे थे कि वो सत्य क्या है, वो सत्य की प्राप्ति मुझे नहीं हुई है अभी तक, इतने गुरु भी कर लिए, लेकिन जब बाबा मिला तो वो सब कुछ अपने आप छूट गया। और भागीदार को दे कहा कि जितना देना है दे दो, जितना आपको रखना है आप रख लो, उसकी भी परवाह नहीं की कि कितना मिलने वाला है। तो यहां भी जो प्राप्तियां हमें बाबा से मिल रही हैं वो बेहद की हैं, लेकिन अगर हम हद की प्राप्तियों में चले जाते हैं, माना इस दुनिया की जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं हमारी, वो कौन सी प्राप्तियां हैं? हद की प्राप्तियां हैं। तो उनके पीछे अगर हम जाते हैं तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं, पर अगर बेहद की प्राप्तियों के स्मृति स्वरूप हैं, बाबा तो हमें इस जन्म की नहीं जन्म जन्मांतर की प्राप्तियां करा रहे हैं, तो फिर असंतुष्टता का सवाल नहीं उठता। तो दुनिया में जो प्राप्तियां मानी जाती हैं स्थूल सूक्ष्म, वो भी बाबा हमें प्राप्त कराते हैं। तंदुरुस्ती है, सब सोचते हैं हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा होगा तो ही हम अच्छा पुरुषार्थ करेंगे, या जो भी जीवन में प्राप्त किया जा सकता है वो अच्छे स्वास्थ्य के होते हुए ही प्राप्त किया जा सकता है। तो हम स्वस्थ रहें और हमारे पास संपत्ति हो, और तीसरी बात संबंध हो, सब संबंध हो, कोई भी संबंध की कमी ना हो। ये स्थूल प्राप्तियां मानी जाती हैं दुनिया में जो व्यक्ति की संतुष्टता का आधार है। तो हमें तंदुरुस्ती मिली है, हमें स्वास्थ्य मिला है। कौन सा स्वास्थ्य? हाँ, कहेंगे शरीर से तो हम सभी इतने स्वस्थ नहीं है, शरीर में तो कोई ना कोई बीमारी होती है, लेकिन आत्मा स्वस्थ है। इस समय शरीर का तो हिसाब किताब है और वो हिसाब किताब हमें यहीं चुकतू करने हैं। 63 जन्मों के जो हिसाब किताब हैं वो या तो तन के द्वारा या संबंधों के द्वारा या कोई भी और आत्माओं के साथ हिसाब किताब के द्वारा जो है वो समाप्त होने हैं, वो हमें पता है। तो तन का हिसाब किताब होते हुए भी आत्मा अगर स्वस्थ है तो हमें तन का रोग भी उतना दुख नहीं देता, उतना कष्ट का अनुभव नहीं होता, जिसको बाबा कहते हैं सूली से कांटा हो जाता। फिर बाबा ने हमें बेफिक्र बादशाह बनाया, है ना। मन स्वस्थ रहने का आधार बेफिक्र बादशाह, यानी हमारे जो भी बोझ हैं वो बाबा के ऊपर हैं। हमारी जिम्मेवारी किसकी है? बाबा की है ना। तो जब हम बाबा को तेरा कह देते हैं, जो चीजें मेरा मेरा कह करके हम भारी होते हैं, मेरी जिम्मेवारी है, मेरी गृहस्थी है, या मेरा बच्चा ऐसा है, या जो भी, जिसको भी हम मेरा कहते हैं, बाबा क्या कहता है? तेरा कर दो। तो जब हमने बाबा को जिम्मेवारी दे दी तो हम हल्के हो जाते हैं। तो कोई भी प्रकार के जो टेंशन्स हैं हमारी लाइफ में, लोग कहते हैं टेंशन के कारण ही 70% बीमारियां होती हैं, और हम सहज ही चिंता मुक्त हो जाते हैं। बाबा को बोला, बस हमारा टेंशन बाबा को ट्रांसफर कर दिया हमने, तो उसके कारण जो बीमारियां होनी हैं वो तो नहीं होंगी। और फिर जो थोड़ी बहुत जो दूसरी बीमारियां हिसाब किताब के कारण आती है, बाबा कहते हैं दवा और दुआ से कर्म भोग को कर्म योग में बदलकर जल्दी खत्म कर दो। अगर हम कर्म योगी हैं, यानी बीमारी कॉन्शियस नहीं है, कोई लोग क्या होता है, थोड़ी सी बीमारी होगी तो हाँ ये हो गया मुझे, ये हो गया, सोचते भी नहीं, वर्णन भी करते रहेंगे उसको। हाँ जरा सिर दर्द भी होगा तो 10 बार बोलते रहेंगे कि मुझे सिर दर्द हो रहा है, या मेरे को कहाँ भी दर्द हो रहा है, जो भी है। तो इसीलिए बाबा कहता है बीमारी कॉन्शियस नहीं होना है, भी तो भी अगर हम सोल कॉन्शियस रहेंगे तो वो बड़ी बीमारी भी हमें छोटी लगेगी, जिसको बाबा कहते हैं सूली से कांटा हो जाता है, यानी उसका दुख हमें अनुभव नहीं होगा, हम सहज उस बीमारी से पार हो जाएंगे। फिर दवाइयां हैं, आज इतना मेडिकल साइंस की प्रोग्रेस हुई है, तो वो किसके लिए है? बाबा नहीं कहता ये सब साइंस किसके लिए निकली है, ये 100 साल की जो साइंस है वो बच्चों को सुख देने के लिए निकली है। तो फिर जो पैथी हमें सूट होती है वो उस बीमारी की हम दवाई कर लें, दवाई करने के लिए तो बाबा मना नहीं करते हैं, और साथ साथ में योग हैं, बाबा की दुआएं हैं, तो बीमारी जल्दी ठीक होती है। मानो कोई असाध्य बीमारी हो गई, अब वो भी हो जाती है, हिसाब किताब है तो ऐसी भी स्थितियां होती हैं। तो असाध्य बीमारी हो गई, उसको कहते हैं असाध्य बीमारी, जिसमें लोग समझते हैं कि हाँ मृत्यु निश्चित है, कि कुछ समय के लिए है, और मानो कैंसर हो गया किसी को, या कोई भी है ना इस तरह से, और भी कई तरह की बीमारियां हैं जिनमें ऐसा होता है। तो फिर बाबा कहता है अगर आप प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, और खुशी खुशी ये शरीर भी जाता है, माना आत्मा स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो ये शरीर भी जाता है, तो आगे जो आपको जन्म मिलेगा आप उसमें भी सेवा करेंगे, और वो भी अच्छे घर में जन्म होगा, यानी जो बाबा कहते हैं गोल्डन स्पून एंड माउथ होगा, क्योंकि यहां से हम लेकर के जा रहे हैं ना, तो हमारी स्थिति कर्मातीत स्थिति होगी। और फिर पता ही है कि बाबा के पास जाएंगे, और बाबा के पास जाकर के फिर आने वाले सतयुग 21 जन्म तो हम संपूर्ण सुखी रहने वाले हैं, तो भविष्य तो हमारा श्रेष्ठ ही है, और अमर तो कोई है नहीं, जाना तो सबको ही है, कोई पहले जाएगा कोई पीछे जाएगा, जाना तो है ही ना। तो फिर बीमारी का वो जो कॉन्शियसनेस है उसमें शरीर नहीं छोड़ना है, लेकिन कर्मातीत स्थिति यानी साक्षी होकर के इन कर्मेंद्रियों से हम अपना इस शरीर से अपना हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, इस कर्ज को हम समाप्त कर रहे हैं। तो क्योंकि बाबा ने हमें तीनों कालों का ज्ञान दिया है, उस समझ से हम कैसी भी परिस्थिति है, शरीर का कैसा भी हिसाब किताब है, वो होते हुए भी हम संतुष्ट रह सकते हैं। फिर संबंधों की बात हम करते हैं, तो संबंध दुनिया में लोगों के सब संबंध नहीं होते हैं, कोई ना कोई संबंध की कमी होती है, माँ होगा तो पिता नहीं होगा, या माँ बाप हैं तो भाई नहीं होगा, या किसी को बहन नहीं होगी, हाँ, या किसी को अच्छे दोस्त नहीं होंगे तो फिर वो असंतुष्ट रहते हैं कि या मेरे ये संबंध की कमी है। लेकिन बाबा के साथ तो हमारे सर्व संबंध हैं। जो संबंध हम बाबा से अनुभव करना चाहें हम कभी भी कर सकते हैं। दुनिया में जो संबंध है वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे, कोई जरूरी नहीं है। और जब सचमुच हमें जरूरत है वो हमारे लिए हाजिर हो जाएंगे, ये भी संभव नहीं है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं। जब बहन को भाई की जरूरत है तो जरूरी नहीं है कि वो भाई उस टाइम पर बहन के पास पहुंच जाए, या जब माँ बाप को बच्चों की जरूरत है तब कोई जरूरी नहीं कि बच्चे माँ बाप के लिए हाजिर हो जाएं। लेकिन बाबा कितनी देर में हाजिर हो जाता है हमारे लिए, बस कहो दिल से मेरा बाबा। हाँ, दिल से बाबा कहते हैं, दिल से कहो मेरा बाबा आ जाओ तो हुजूर हाजिर है। और सबसे वंडरफुल बात कि वो सब हो जाता है, वो पिता भी है तो वो फ्रेंड भी है, वो हमारा साथी भी है तो साजन भी है, जो भी हम कहें जो संबंध। और ऐसे नहीं कि एक के साथ संबंध बाबा निभा रहा है तो दूसरे के साथ नहीं आ सकता, ऐसे है क्या? जितने बाबा को याद करेंगे, जो संबंध निभाना चाहेंगे, सबके साथ एक साथ बाबा संबंध निभा सकता है। तो कितना कितना श्रेष्ठ संबंध हमें प्राप्त है, और वो संबंध जो अविनाशी संबंध है, और वो संबंध जो सदा हमारे लिए हाजिर है ना। फिर बाबा के साथ साथ हमें दैवी परिवार भी मिला है, और कितना निस्वार्थ स्नेह मिला इन संबंधों में। दुनिया में तो स्वार्थ के संबंध है, अभी संडे की मुरली में बाबा ने कहा कि धोखा देने वाले संबंध हैं, जो भी संबंध हैं वो कहीं ना कहीं स्वार्थ है, इसलिए कहीं ना कहीं धोखा खा लेते हैं या धोखा दे देते हैं, दोनों ही बातें होती हैं। लेकिन एक बाबा ही है जो हमें निस्वार्थ स्नेह करता। बाबा को अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, कहा ना बाबा ने ये भी बात कही कि मैं बच्चों को के लिए को सब कुछ देता हूँ, विश्व का मालिक बनाकर चला जाता हूँ। कल की मुरली में ही ये बात थी बाबा की, लेकिन मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। तो हमें दैवी परिवार से भी निस्वार्थ स्नेह मिलता है, और बाबा से भी वो जो परमात्मा स्नेह मिला उसी ने हमें बाबा का बनाया, उसी ने हमें बाबा के समीप लाया, उसी ने हमें सहज पुरानी दुनिया को छोड़ने की शक्ति दी, ऐसा हम कहेंगे। जो देहे देहे के संबंध और जो देहे के पदार्थ हैं, पुरानी दुनिया से जो वैराग हमें बाबा कहता है। हम तो प्रवृत्ति में रहते हुए भी हमारा त्याग कौन सा त्याग है? हमारा त्याग मन और बुद्धि से त्याग है, कोई स्थूल में हम त्याग करके नहीं जा रहे हैं जैसे भक्तों ने किया या सन्यासी करते हैं। लेकिन प्रवृत्ति में रहते हुए सब कर्म करते हुए मन से वैराग है। तो वो बाबा के स्नेह ने सहज हमसे वो करवा लिया, तो वो शक्ति है उस संबंध की, ऐसा हम कहेंगे। और फिर संपत्ति की बात आती है, सबसे ज्यादा लोग असंतुष्ट होते हैं संपत्ति। तो बाबा ने कहा, जो हमने अभी बताया कि हमको तो अविनाशी संपत्ति मिली है ना, जो ज्ञान धन है वो ज्ञान धन हमारा अविनाशी धन है, और वो धन स्थूल धन को भी लाने वाला है। कहते हैं नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। दुनिया में भी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अच्छी कमाई करते हैं ना, और हमारा ये जो ज्ञान धन है वो इस समय ही कमाई करवाने वाला नहीं है, लेकिन वो 21 जन्मों के लिए हमें पद्मा पदम पति बनाने वाला है। बाबा कहते हैं आप रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो, है ना। कभी भी ये नहीं समझो कि हम गरीब हैं, मतलब इस समय तो गरीब निवास है ना। बाबा तो जो बाबा के बच्चे बनते हैं वो दुनिया की नजरों के में तो गरीब ही हैं, ऐसा कहेंगे ना। दुनिया की नजरों में जो साहूकार होते हैं वो तो करोड़पति अरबपति होते हैं, बाबा के बच्चे तो क्या कहेंगे उसकी भेंट में। तो बाबा कहते हैं कभी भी अपने आप को नहीं समझो कि हम गरीब हैं, लेकिन सबसे साहूकार हम हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कमाई हम कर रहे हैं। एक कदम उठाते हैं तो एक कदम में पद्मों की कमाई हमारी होती है जो हम बाबा की याद में कर्म करते हैं। तो इतनी कमाई कोई कर सकता है दुनिया में? फिर चाहे बाबा कहते हैं हम सूखी रोटी खाते हैं, दाल रोटी खाते हैं, लेकिन वो जो दाल रोटी भी है वो सुख की दाल रोटी है, क्योंकि वो भगवान की याद का ब्रह्मा भोजन है। और वो सुख 36 प्रकार के भोजन में भी नहीं है जो हमें बाबा की याद के बने हुए ब्रह्मा भोजन खाने में जो सुख मिलता है। फिर कोई सोचते हैं असंतुष्ट कब होते हैं? जब हम दूसरों से तुलना करने लगते हैं। अपने आप में इन प्राप्तियों को याद करेंगे तो संतुष्ट रहेंगे, लेकिन दूसरे को देखा तो ऐसा मकान मुझे भी होना चाहिए, इनका मकान बड़ा अच्छा है, फिर एक गाड़ी तो मेरे पास भी होनी चाहिए। याद बहने होती हैं, उनको कोई गहनों वहनों का शौक होता है, जो भी हमारी इच्छाएं हैं, सांसारिक इच्छाएं जो होती हैं, वो दूसरे के पास मैंने देख ली तो फिर मुझे भी वो इच्छा हो जाती है। और जब हम इच्छाओं में जाते हैं तो फिर ईर्ष्या भी होती है कई बार, दूसरों के पास ज्यादा देख करके उनके सुख में हम सुखी नहीं होते, असंतुष्ट कब होते हैं और फिर अप्रसन्न क्यों हो जाते हैं? उनके कारण यही बनते हैं कि हम हद में आ जाते हैं, जो कहा कि हद की प्राप्तियों के पीछे हम जाने लगते हैं। तो यहां पर बाबा हमें कहते हैं कि हमें जो याद रखना है उस समय, जो भी बाबा से हमें मिला है, इच्छा मात्रम अविद्या बाबा हमें कहते हैं ना, तो इन इच्छाओं से हमें अविद्या होनी चाहिए, क्योंकि ये हद की इच्छाओं के पीछे जाना ऐसे है जैसे हम परछाई के पीछे जा रहे हैं और कभी भी वो परछाई पकड़ में नहीं आती है, लेकिन अगर हम रोशनी के आगे जाते हैं तो वो परछाई अपने आप पीछे पीछे आती है। तो यहाँ ज्ञान सूर्य बाबा हैं, और जब हम बाबा से योग लगाते हैं तो जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं, अब ऐसा नहीं है कि जीवन में हमारी आवश्यकताएं नहीं होती हैं, आवश्यकताएं तो होती है ना, तो वो अपने आप पूरी होती हैं, हमें सोचना भी नहीं पड़ता और बाबा हमारी उन आवश्यकताओं को पूरा कर देते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं कि जो बाबा के सच्ची दिल वाले बच्चे हैं उनको सुख की दाल रोटी देने की गारंटी बाबा की है। आलस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये बाबा उनकी पूरा करता है। तो समझते हैं कि बाबा हमारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। माना अगर हम ये कहें कि बाबा मुझे करोड़पति बना दे तो वो नहीं करेगा बाबा, लेकिन जो हमारी जीवन की आवश्यकताएं हैं वो बाबा सहज पूरी कर देते हैं, अगर बाबा से हमारा बुद्धि योग बिल्कुल ठीक है। लगता है ऐसा कि बाबा हमारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं? हाँ, जो समझते हैं वो हाथ उठाओ। देखो सभी हाथ उठा रहे हैं, तो बस और क्या चाहिए। बाबा ने कहा, कई कई बच्चे सोचते हैं हम साहूकार होते ना तो बहुत सेवा करते, थोड़ा सेवा का लालच होता है, चलो और कोई नहीं हमें धन का लालच है दुनिया जैसा, लेकिन सेवा में धन लगा दें, क्योंकि सेवा में धन लगाएंगे तो हमारा भाग्य बनेगा, वो जमा होगा। तो बाबा कहता है, अगर बाबा का तो नियम है फूरी फूरी तालाब, है ना, बाबा तो बाबा के गरीबों का जो थोड़ा थोड़ा लगता है वही बाबा के यहाँ सफल होता है। बाबा ने कहा अगर साहूकार होंगे तो क्या होगा? साहूकार होंगे तो माया ले जाएगी, साहूकार होंगे तो यहाँ रहेंगे ही नहीं। तो इसलिए जो हैं जैसे हैं वैसे बहुत अच्छे हैं और संतुष्ट हैं उसमें। और वो सच्चे दिल से जो बाबा के उसमें किया, गरीब का एक रुपया भी बाबा कहता है और साहूकार का 1000 रुपया भी बराबर है, अगर हमने दिल से वो सेवा की और वो धन में समर्थी है, माना ताकत है, भले वो कम है लेकिन उसमें वो शक्ति भर जाती है। फिर सूक्ष्म इच्छाएं होती हैं मनुष्य की, नाम मान शान की इच्छा होती है। तो यहाँ बाबा कहता है आपको बेहद का नाम मान शान मिला हुआ है, हद के नाम मान शान के पीछे मत जाओ। हद के नाम मान शान के पीछे जाते हैं ना तो फिर असंतुष्ट होते हैं। बेहद का नाम मान शान क्या है? बाबा ने खुद हमें नाम दिया है, हमारा नाम कौन लेता है? सबसे बड़ी बात, बाबा कहता है मैं हर एक बच्चे को याद करता हूँ, हर बच्चे का नाम लेता हूँ, हर बच्चा मेरे दिल में है। भक्त भगवान का नाम लेते हैं, है ना, किसकी माला जपते हैं? राम 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 करके भगवान के नाम की माला जपते हैं ना, जो भी स्मरण करते हैं या मंत्र जपते हैं, किसके लिए? फिर भी उनको तो भगवान नहीं मिला, और हमें घर बैठे भगवान मिला और वो हमें जपता है। वो एक कहानी आती है ना अच्छी, कि एक बार नारद जी जो है वो विष्णु जी के पास गए और देखा कि विष्णु जी जो है वो एक डायरी देख रहे हैं। तो वो तो थे ही थोड़ा इस तरह के कि उनको समाचार सब चाहिए, तो उन्होंने पूछा भगवान आप ये क्या देख रहे हैं आज? तो विष्णु जी ने कहा कि मैं इसमें उन भक्तों को देख रहा हूँ जो मुझे सबसे ज्यादा याद करते हैं। तो फिर नारद जी को जिज्ञासा हुई कि मेरा नाम कहाँ है इसमें, मैं तो बहुत याद करता हूँ भगवान को। तो उन्होंने झांक के देखा तो उनको दिख गया कि मेरा नाम सबसे ऊपर है, तो बहुत खुश हो गए। फिर उनकी है ना हनुमान जी से ईर्ष्या थी, तो उन्होंने देखा हनुमान जी का नाम कहाँ है इस लिस्ट में, मेरा नाम तो सबसे ऊपर है, तो देखा हनुमान जी का नाम तो है ही नहीं, तो वो उसमें और भी खुश हो गए कि हनुमान जी का नाम तो भगवान की लिस्ट में है ही नहीं। तो वो गए तुरंत हनुमान जी के पास पहुंच गए और फिर उन्होंने सारा समाचार सुनाया हनुमान जी को, जैसे उनकी आदत है, उनको कहते ही थे ना तुरंत इधर का इधर की बात उधर करना, वो नारद जी का की विशेषता। तो सुना दिया जाकर कि भगवान जी ऐसे से देख रहे थे, आपका तो नाम था ही नहीं उसमें। तो हनुमान जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं जैसे भगवान की भक्ति करता हूँ उससे मैं खुश हूँ। फिर दूसरे दिन गए जब वो विष्णु जी के पास, तो देखा कि आज भी वो डायरी देख रहे हैं। फिर पूछा आज क्या डायरी देख रहे हैं? तो कहा कि आज मैं वो देख रहा हूँ जिनको मैं याद करता हूँ। पहले दिन था जो भक्त मुझे याद करते हैं और आज मैं जिनको याद करता हूँ। तो देखा नारद जी ने उसमें, तो देखा कि उसमें हनुमान जी का नाम सबसे ऊपर है और उसमें नारद जी का नाम। तो हम कौन से बच्चे हैं बाबा के, जिनको भगवान खुद नाम देता है, जिनको भगवान खुद याद करता है। तो इतना बड़ा नाम भगवान ने हमें दिया, और फिर हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं हम। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मणों का नाम ही कितना ऊंचा है। दुनिया में भी आज जो नामधारी ब्राह्मण है, यानी जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेते हैं, आज तक भी वो ब्राह्मण नाम से ही धन कमाते हैं। यानी अभी भी शरीर निर्वाह उनका वो ब्राह्मण होने से ही चल जाता है। तो सोचो नाम जो बाबा ने हमें दिया, हम तो सच्चे ब्राह्मण हैं, तो वो भी कितना ऊंचा नाम हो गया। तो फिर कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरा नाम तो कहीं लेते ही नहीं है। हाँ, या जैसे किसी किसी के मन में आ जाता है कि ये सेवाओं में मेरा नाम भी आना चाहिए, मुझे भी पूछना चाहिए। हाँ, या मेरे अंदर वो योग्यता है, कई समझते हैं कि हमारे अंदर इतनी योग्यता है, तो उस योग्यता के अनुसार जो है मेरा नाम इस सेवा में होना चाहिए। तो एक मुरली में बाबा ने कहा था कि मानो आपके अंदर योग्यता है और आप ऐसे समझते हो कि मेरा होना चाहिए, मुझे चांस मिलना चाहिए, और मानो आपको नहीं मिलता है। उसके कई कारण हो सकते हैं, यह हो सकता है कि उस आत्मा के साथ हमारा हिसाब किताब है और उस हिसाब किताब के कारण भी वो हमें पीछे कर देते हैं। तो फिर बाबा ने कहा कि अगर ऐसा है तो बाबा की विजय माला में आपका नाम मिस नहीं होगा। हो सकता है आप राइट हो, वो आत्मा रॉन्ग है, अब ये बराबर है, आप राइट हो, लेकिन अगर यहाँ आपका नाम मिस हो गया तो भगवान की विजय माला में आपका नाम पहले है। तो हमें किसके पास नाम चाहिए? आत्माओं के पास चाहिए या जो परमात्मा ने हमें दे दिया वो चाहिए, है ना। तो फिर उस आधार पर हम संतुष्ट रहे इसमें। और फिर मान की बात तो हम सब जानते हैं कि भगवान ने हमें अपने से भी आगे रखा है। अपने को बच्चों का सेवाधारी कहलाते हैं बाबा। मैं बच्चों का मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट है, बच्चे बालक सो मालिक हैं। और बच्चे मेरे से भी डबल पूजे जाते हैं, मैं तो सिंगल पूजा जाता हूँ। और बाबा कहते हैं आपके चित्रों तक का मान है। आज मंदिरों में किसकी पूजा हो रही है, किसकी मूर्तियां हैं, किसकी मूर्तियां हैं, कौन देवता बनने वाले हैं, कौन देवता बनने वाले बताइए, बनने वाले हैं देवता। हाँ तो देखो, तो फिर हमारी जड़ चित्रों की पूजा हो रही है, कितना भक्त सम्मान से पूजा करते हैं, कितना विधि पूर्वक पूजा करते हैं। तो फिर जब हम अपना मान अपनी आंखों के आगे देख रहे हैं वो बेहद का मान है। और जो सोमान बाबा ने दिए, जो टाइटल हमें दिए हैं, वो टाइटल दुनिया में किसी को भी नहीं है। आज कितने बड़े बड़े वीआईपी हैं जिनके नाम आते हैं हु इज हु, लिस्ट होती है दुनिया में, लेकिन भगवान के हु इज हु में कौन है वो नहीं है। बड़े बड़े विद्वान या बड़े बड़े पॉलिटिशियंस या बड़े बड़े साइंटिस्ट जिन्हें हम कहेंगे, वो भगवान के हु इज हु की लिस्ट में नहीं है। कौन है भगवान के हु इज हु की लिस्ट में, जो दुनिया की भेंट में साधारण आत्माएं हैं। दुनिया की भेंट में तो कोई मानेगा कि ये भगवान की नजरों में है, क्या कहेंगे, तो कौन से टाइटल मिले हुए हैं। ऐसे टाइटल दुनिया में किसी को नहीं मिले। कौन से मिले हैं सुनाओ, मास्टर भगवान, हाँ सबसे बड़ा टाइटल हो गया ये तो। और हाँ, नूरे रतन हूँ, पद्मा पदम भाग्यवान हूँ, कोटों में कोई, कोई में भी कोई, चुने हुए ना भगवान के रतन, सब चुने हुए हैं। हाँ, दिल तख्त नशीन है बाबा के, विश्व कल्याणकारी हैं, भगवान के राइट हैंड हैं, पूर्वज आत्माएं हैं, समस्त विश्व की आत्माओं के हम पूर्वज हैं, आधार मूर्त हैं, उद्धार मूर्त हैं, मास्टर भाग्य विधाता है। देखो एक से एक टाइटल, मास्टर रचयिता है। तो ये सब बाबा ने हमें बनाया है, केवल कहा नहीं है पर सचमुच ये कर्तव्य बाबा हमसे अभी कराते हैं। हम बच्चों से हमें वो अनुभव भी कराते हैं कि हम ही देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं। हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं ऐसी पढ़ाई दुनिया में किसी ने नहीं पढ़ी, वो शास्त्रों में है ही नहीं, हमें ही भगवान आकर के पढ़ाते हैं। कितना ऊंचा भाग्य है हमारा। तो उस मान को जो भगवान हमें खुद दे रहा है उसे हम याद करें। वो हद के नाम मान शान के पीछे नहीं जाए। अब शान भी बाबा कहता है, आप बच्चे बाबा के दिल तख्त नशीन हो, इससे बड़ा शान और क्या होगा। लेकिन दुनिया के शान में लोग क्या करते हैं, अभिमान में आ जाते हैं। दुनिया में लोग शान दिखाने की कोशिश करते हैं ना, तो उसमें कहीं ना कहीं अभिमान होता है। और उसकी निशानी क्या होती है, उसकी निशानी होती है कि उसको छोटी बातों में भी अपमान महसूस होगा। कोई जरा कुछ कह दे उसको, हंसी में भी अगर किसी ने कुछ जरा सी बात कह दी तो बस फीलिंग आ जाएगी, मूड ऑफ हो जाएगा, हाँ, और फिर नाराज हो जाएंगे उनसे, हो जाता है ऐसा। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब वो रियल शान में हम नहीं हैं, यानी कहीं ना कहीं उसमें अभिमान का अंश है। तो संतुष्टता इन बेहद की प्राप्तियों के आधार पर है। फिर बाबा कहता है स्वयं से संतुष्ट हों हम, बाबा से संतुष्ट हों, और संबंधों में भी जो संबंध संपर्क हैं हमारे उनमें भी हम संतुष्ट रहें और संतुष्ट करें भी, सबको संतुष्ट करें भी। स्वयं से संतुष्ट रहना माना स्वयं के पुरुषार्थ से, स्वयं के संस्कारों से, और स्वयं की जो भी प्राप्तियां हैं उससे। असंतुष्ट क्यों हो जाते हैं, कि जितना तीव्र पुरुषार्थ मैं करना चाहती हूँ उतना तीव्र पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। अमृत वेला जैसा होना चाहिए वैसा अमृत वेला नहीं हो रहा है। या सारे दिन में भी जो हम चाहते हैं जिस तरह से उस तरह से हमारी दिनचर्या नहीं चलती है। मेरे संस्कार जो मैं चाहती हूँ कि इस तरह के मेरे संस्कार इमर्ज नहीं होने चाहिए, जो पुराने संस्कार हैं, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, बहुत मेहनत कर ली मैंने उसके ऊपर लेकिन फिर भी क्या करूं, गुस्सा आ ही जाता है मुझे, क्या कहेंगे जो समझते हैं अभी तक भी मुझे गुस्सा आ जाता है। सबसे कॉमन जो संस्कार इमर्ज होता है वो ये वाला ज्यादा होता है। सारे दिन में ऐसा होगा, कोई मेरी बात नहीं मानेगा या कोई मेरे से अच्छा व्यवहार नहीं करेगा या कोई कमी रह जाएगी किसी के काम में, गलती कर देगा कोई या कोई मेरी इंसल्ट कर देगा, हो सकता है ये सारी बातें, कोई मेरी निंदा कर देगा, कोई ना कोई ऐसी बात होनी ही है क्योंकि ये सब पेपर हमें आने ही, हमारी शक्तियों का कितना खजाना जमा है हमारे पास उसका टेस्ट पेपर भी तो होता है ना, तो ये परिस्थितियां तो पैदा होंगी ही होंगी। और कलयुग है तो आत्माओं के तमोगुणी संस्कार हैं, वो कहीं ना कहीं इमर्ज होते ही हैं, लेकिन हमारा फर्ज क्या है? तो बाबा हमेशा कहते हैं कि कोई 10 बार भी ऐसा करे, चाहे 50 बार भी करे, माना ये सारी जो स्थितियां पैदा हो रही हैं, तो भी मुझे क्या करना है, मुझे चुप रहना है, तो भी मुझे संतुष्ट रहना है, तो भी मुझे खुश रहना है उस आत्मा से, ऐसी आत्मा जो ये सब कर रही है उससे हम संतुष्ट और खुश रह सकते हैं, सोचो। या रहते हैं या सोचते हैं कि रहना तो चाहिए लेकिन नहीं रह पाते हैं, जो सोचते हैं ऐसा सब होने पर भी हम रहते हैं, वो हाथ उठाओ, 2-4। तो तब हम कहेंगे कि हम भी संतुष्ट और दूसरों को भी हम संतुष्ट कर रहे हैं। तो कितना भी सहन करना पड़े, ये हमारी सहन शक्ति और समाने की शक्ति का पेपर है जिसे हम कहेंगे। तो 50 बार भी अगर हम सहन करेंगे तो बाबा कहता है सहनशीलता का जो फल होगा वो अविनाशी और मधुर होगा और वही उस आत्मा को परिवर्तन करेगा। पर इतना धीरज हमें रखना पड़ेगा, अगर हम इतना धीरज रख पाते हैं, और तब रख पाएंगे जब हम राज को जानते हैं, हमें पता है ना राज, जैसे कहा ना कि तीनों कालों का राज भगवान ने हमें समझा दिया, तो जो राज को जानते हैं वो कभी नाराज नहीं होते, कहते हैं राज को जानने वाले ही राजी रहते हैं। तो हमें उस आत्मा का राज पता है, वो ऐसा क्यों कर रही है, वो परवश है, और मुझे क्या करना है वो भी मुझे पता है क्योंकि भगवान ने हमें वो ज्ञान दिया है, समझ दी है, और वो समझ को यूज करना ही संतुष्ट रहना है, उस प्राप्ति का अनुभव करना है, ऐसा हम कहेंगे। तो और बाबा से भी हमें संतुष्ट रहना है, ड्रामा से भी संतुष्ट रहना है। तो प्रसन्न चित्त माना जो सदा निर्दोष और निस्वार्थ दृष्टि वृत्ति वाले होते हैं, वही सदा संतुष्ट और प्रसन्न रह सकते हैं, जिसको बाबा कहता है कि प्रसन्न चित्त माना प्रश्न चित्त नहीं। तो निर्दोष दृष्टि का मतलब किसी पर भी दोष नहीं, ना किसी आत्मा पर कि इस आत्मा के स्वभाव संस्कार ऐसे हैं, दूसरों से असंतुष्ट हो गए उनके स्वभाव संस्कार को लेकर के कि इस आत्मा के स्वभाव संस्कार ऐसे हैं, इनकी ये कमी कमजोरी है इसलिए हम इनसे असंतुष्ट हैं। फिर ना बाबा से कि भाग्य विधाता ने मेरा भाग्य ऐसा क्यों बनाया। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे माताएं सोचती हैं क्यों मैं अधर कुमारी बन गई, मैं कुमारी होती संगम युग में कुमारी माना बहुत भाग्यवान है तो मैं भी टीचर बन जाती, सोचते हैं ऐसा तो असंतुष्ट हो जाते हैं ये सोचकर। तो ये सोचना नहीं है, बाबा कहते हैं जो पाठ हमें ड्रामा में मिला है उस पार्ट में ही विशेषता है। और कोई भी बाबा ने ऐसे नहीं कहा कि जो समर्पित हो गए वही संपन्न और संपूर्ण बनेंगे और जो प्रवृत्ति में है वो संपन्न संपूर्ण नहीं बन सकते। कहा बाबा ने किसी मुद्दे में, जो ट्रस्टी हैं वो नंबर वन नहीं आ सकते और जो समर्पित हैं वही नंबर वन आ सकते हैं। लेकिन जो पार्ट हमें मिला है ड्रामा में, उस पार्ट में रहते हुए मुझे पुरुषार्थ करके नंबर वन जाना है और कोई बाबा ने हमारे लिए सीमा नहीं रखी है, तो उस पार्ट को पहचानना है अपना ड्रामा में। फिर सोचते हैं क्या कल्प यही पार्ट मेरा रिपीट होगा, क्या ड्रामा में हमेशा ही मुझे, क्या बाबा ड्रामा बदल नहीं सकते हैं, ऐसे ऐसे भी संकल्प बाबा के कई बच्चों के चलते हैं। फिर यह भी सोचते हैं इतनी देर से हम ज्ञान में क्यों आए, बाबा क्यों हमें देर से मिला, हम क्यों नहीं साकार बाबा के टाइम, है ना, सोचते हैं साकार बाबा के टाइम पर आ गए। तो ये सब बाबा कहता है सोचना माना व्यर्थ संकल्प चलाना है, क्योंकि अगर हम लास्ट में भी आए हैं तो भी उसका भी प्लस पॉइंट है। हर चीज का प्लस माइनस होता है। बाबा ने कहा जो पहले ज्ञान में आए वो कितने चले गए और हम लास्ट सो फास्ट वाले टाइम पर आए हैं। आज देखो हमें पुरुषार्थ के कितनी तीव्र गति के साधन मिले हुए हैं, हम जितना फास्ट रेस करना चाहें उतना कर सकते हैं, कोई कमी नहीं है, क्योंकि सारा मक्खन निकल चुका है। बाबा ने जो देना था सब ज्ञान दे दिया। पहले वालों ने कितनी मेहनत की, इतने सालों मेहनत की, तब जाकर के वो ज्ञान की महीनता सबको मिली, वो समझ में आई। तो लास्ट वालों को बाबा की विशेष वरदान है तो भी हम नंबर वन आ सकते हैं, अगर टू लेट नहीं है, ये बाबा ने कहा, माना अगर थोड़ा लेट भी है तो भी कोई हर्जा नहीं है। तो ड्रामा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें किसी को भी कोई शिकायत करने का अवसर बाबा नहीं देता है कि किसी की बाबा के प्रति कोई कंप्लेन रहे। फिर शरीर से भी असंतुष्ट, शरीर को भी दोष नहीं देना है कि मेरा शरीर ही ऐसा है, मेरे कर्म भोग ऐसे हैं। प्रकृति को भी नहीं कि प्रकृति का वायुमंडल ऐसा है, होता है ना प्रकृति का भी वायुमंडल वाइब्रेशन चेंज होता रहता है, तो कई लोग उससे भी असंतुष्ट हो जाते हैं। नहीं, लेकिन सदा ही किसी को भी दोष नहीं देना है और निस्वार्थ जितना होंगे हम, माना दातापन की भावना, अपने प्रति इच्छा नहीं, जितना हमारा भाव होगा, जो बाबा हमें देवता बना रहा है, देवता का मतलब ही क्या है, देने वाला, ये मेरे लिए करे, ये मुझे प्यार चाहिए, मुझे पूछना चाहिए, मुझे सम्मान देना चाहिए, नहीं मुझे देना है, हम देंगे तो हमें मिलेगा, ये सिद्धांत है, मान दो तो मान अपने आप मिलेगा। तो अगर हम बाबा की इन शिक्षाओं को स्मृति में रखते हैं, जो ज्ञान के राज बाबा ने हमें समझाए हैं और जो बेहद की प्राप्तियां बाबा ने हमें कराई उनके स्मृति में रहते हैं। बाबा कहते हैं हर दिन कोई ना कोई प्राप्ति को स्मृति में रखो, विस्मृति में जाना ही नहीं है, हर दिन कोई अपनी प्राप्ति, आज के दिन मुझे इस गुण की स्मृति में रहना है, या जो भी बाबा ने हमें विशेष जो सम्मान दिए हैं उन सम्मान की खुशी और नशे में रहना है, या जो भी पांच स्वरूपों का हम सुदर्शन चक्रधारी जिसको हम कहते हैं, वो सुदर्शन चक्र को फिरा करके कि पूरे बेहद के ड्रामा में मेरा कितना श्रेष्ठ पार्ट है, हम हीरो एक्टर हैं, तो इस तरह के नशे की बातें, प्राप्ति की बातें अपनी स्मृति में रखते हुए सदा हम संतुष्ट रहें, प्रसन्न रहें, और जब हम प्रसन्न रहेंगे तो दूसरों को भी हम क्या देंगे, जिसके पास जो है वो वही देगा, दूसरों को भी हम खुशी देंगे, और दूसरे भी जब हमारे पास आएंगे तो उनके प्रश्नों को भी हम समाप्त कर सकेंगे। जब हम स्वयं प्रसन्नचित होंगे तो उनकी समस्याओं का भी हम समाधान कर सकेंगे। ठीक है, ओम शांति।
रही आष्ट कोई मन में, प्रभु जब से आए जीवन में। Yeah.